بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔ ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ معارج کی 19 سے لے کر 29 آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندے منش بڑا لوبھی ہے، جب اسے پیڑا اور کشتی ہوتی ہے تو چیخ پکار کرنے لگتا ہے، اور جب اسے دھن سمپتی مل جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے، سوائے ان واسطوک نمازیوں کے کہ جو سدیف نماز میں اپنی آیو بتاتے ہیں اور جن کی سمپتی میں ایک اسپشٹ ادھیکار نردھارت ہوتا ہے۔ مانگنے والے دردروں اور نہ مانگنے والے ونچتوں کے لیے، اور جو لوگ پرلے کے دن کی پشٹی کرنے والے ہیں، اور جو اپنے پالنہار کے دنڈ سے ڈرنے والے ہیں، कि उनके पालनहार के दंड से कोई भी बचने वाला नहीं है और जो अपने आप को व्यभिचार से बचाते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी समय की सभा का प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.ir/hi। हमारे फेसबुक पेज का पता है parstoday.hindi। श्रोता, व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 00989850 65492। श्रोता, आज रविवार है, दय मास की 17 जनवरी की 7 और जमा दिस्तानी की 24 तारीख। हमारी समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। आप सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के बाद आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार। और श्रोताओं, सभा के अंत में हम आपको अपना एक और कार्यक्रम सुनवाएंगे आज कल। तो यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास से विश्व समाचार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के विदेश मंत्री ने फ्रांसीसी समकक्ष से टेलीफोनी बातचीत में कहा कि आतंकवाद का मुकाबला सबको मिलकर करना चाहिए। फिलिस्तीन में ज़ायनी सेना के हमलों के दौरान आज भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और ईरान ने कहा है कि फिलिस्तीनी फोर्सेस को एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए आज मतदान हुआ, कई पार्टियों ने चुनावों का बहिष्कार किया। भारत का सौर अंतरिक्ष मिशन सूरज की कक्षा में प्रवेश कर गया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने फ्रांसीसी विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के साथ टेलीफोन पर बातचीत में विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ अधिक प्रयास करने की अपील की। शनिवार को टेलीफोन पर हुई बातचीत में ईरानी विदेश मंत्री ने किरमान आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि विश्व समुदाय को अधिक व्यवहारिक और प्रभावशाली रूप से आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लड़ाइयों को रोकने और स्थायी शांति की स्थापना के लिए समस्याओं का सही समाधान खोजना होगा। गजा में हजारों निर्दोष फिलिस्तीनियों के नरसंहार का उल्लेख करते हुए अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि फिलिस्तीनियों की भूमि पर कब्जे को नजरअंदाज करके और ज़ायनी शासन को फिलिस्तीनियों के नरसंहार की खुली छूट देकर क्षेत्र को अस्थिर करने वाले मूल कारणों की अनदेखी की जा रही है, जबकि लाल सागर की सुरक्षा की चिंता की जा रही है। ईरानी विदेश मंत्री कोलोना ने फ्रांसीसी विदेश मंत्री कोलोना ने इस बातचीत में किरमान आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए कहा कि तेहरान को क्षेत्र में जारी झड़पों को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए।
आईआरजीसी के गुड्स ब्रिगेड के कमांडर इस्माइल कानी ने हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख इस्माइल हानिया के नाम संदेश में कहा कि प्रतिरोधी बल बच्चों के हत्यारे ज़ायनी शासन के लिए एक डरावना सपना बन जाएंगे। बेरूत में हमास के कार्यालय के प्रमुख साले अल आरूरी की इसराइली हमले में शहादत की संवेदना देते हुए जनरल कानी ने कहा कि ज़ायनी शासन प्रतिरोधी मोर्चे के नेताओं की हत्याएं करके गजा युद्ध में मिलने वाली अपमानजनक हार को छिपाना चाहता है। انہوں نے کہا کہ شہید العروری کی ایسے وقت میں ہتیا کی گئی جب ویسٹ بینک میں بھی دشمن کو ناکوں چنے چبانے پڑ رہے ہیں۔ غورطلب ہے کہ 1992 میں زیونی شاسن نے العروری کو گرفتار کر کے جیل ڈال دیا تھا۔ ان پر آروپ تھا کہ وہ ویسٹ بینک میں حماس کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ 2007 میں انہیں آزاد کر دیا گیا تھا، لیکن 3 مہینے بعد پھر سے گرفتار کر لیا گیا، اور 2010 میں اسرائیل کی اچ عدالت نے انہیں آزاد اور دیش نکالا دینے کا فیصلہ سنایا تھا۔
فلسطین میں غزہ پٹی پر زیونی شاسن کے بربر حملوں کے دوران آج بھی کئی گھٹنائیں ہوئیں۔ غزہ کے سواستھیہ منترالے نے بتایا کہ زیونی شاسن کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی سنکھیا بڑھ کر 22,835 ہو گئی ہے، جبکہ گھائلوں کی سنکھیا 58,316 ہے۔ سنیکت راشٹر سنگھ کی رپورٹر ایرن خان نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں انتراشٹری قانونوں کا ہنن کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں پترکاروں کو نشانہ بنایا جانا خوفناک اپرادھ ہے۔ سرکشا پریشد کو چاہیے کہ غزہ پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھے۔ اس میں غزہ پٹی میں ڈھیروں ساکھے موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ زیونی شاسن غزہ پٹی میں اپرادھ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنیکت راشٹر سنگھ کے ادھیکاریوں کو چاہیے کہ وہ غزہ پٹی پر دباؤ ڈالیں اور اس کے اپرادھوں پر انکش لگائیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے بھیتر زیونی شاسن نے کم سے کم 12 جن سنہار غزہ پٹی میں کیے، جس کے نتیجے میں 113 فلسطینی شہید اور 250 گھائل ہوئے۔ پترکاروں کے انتراشٹریہ یونین نے کہا کہ غزہ میں پترکاروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراصل جان بوجھ کر پترکاروں کو نشانہ بنانے کی گھٹنا ہے۔ یونین کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ٹیم ڈاوسن نے کہا کہ غزہ میں پترکاروں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے، پترکاروں کو غزہ کے بھیتر جانے کی انومتی بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بس یہ آشا کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد غزہ میں جو پرکریا جاری ہے اسے بدلا جائے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے سارے نواسی بڑے بھیانک دور سے گزر رہے ہیں، لیکن پترکاروں کو جنگ نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔
اسرائیل نے الجزیرہ عربی کے پترکار وائل دہدو کے بیٹے حمزہ دہدو کو قتل کر دیا۔ اس سے پہلے اسرائیل اس پریوار کے کئی لوگوں کو قتل کر چکا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہونے والے پترکاروں کی سنکھیا 109 ہو گئی ہے۔ اس بیچ ایران کی سپاہی پاسداران انقلاب فورس IRGC نے کہا کہ غزہ میں ریزسٹنس فورسز کو اسرائیل کے ہوائی حملے روکنے کے لیے ایئر ڈیفینس سسٹم دیا جائے گا۔ IRGC کی کچھ فورس کے ورسٹ کمانڈر ایرج مسجدی نے کہا کہ غزہ میں ریزسٹنس فورسز کو ایئر ڈیفینس سسٹم دیا جائے گا۔ اس بیچ جہاد اسلامی کی سینک شاخہ کچھ فورس نے غزہ پٹی سے کچھ استھت زیونی بستیوں پر میزائل فائر کیے ہیں۔ اس حملے کے بعد ناہل اوز زیونی بستی میں سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔
فلسطینی فٹ بال ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ فلسطین کی اولمپک فٹ بال ٹیم کے کوچ ہانی المستر اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے انوسار 42 سال کے ہانی المستر نے 2018 میں ریٹائر ہونے اور فلسطین کی نیشنل ٹیم کے کوچ بننے سے پہلے غزہ اسپورٹس کلب کے مڈ فیلڈر کے روپ میں کھیلا۔ رپورٹ کے انوسار پچھلی رات غزہ پٹی پر زیونی شاسن کے حملے میں اولمپک فٹ بال ٹیم کے کوچ گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ فلسطینی فٹ بال ایسوسی ایشن نے ہانی المزدر کی موت کو بڑا نقصان قرار دیتے ہوئے کہا کہ 7 اکتوبر سے اب تک 67 فٹ بالروں سہت 88 مہیلا اور پرش کھلاڑیوں کے علاوہ 24 اسپورٹس ادھیکاری اور ٹیکنیکل اسٹاف کے لوگ زیونی شاسن کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی آپریشن کے بعد زیونی شاسن غزہ پٹی پر اندھا دھند حملے کر رہا ہے۔ ان حملوں میں 22,000 سے ادھک فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔
نسلی صفائی کا مدعا انتراشٹری عدالت میں پیش کر دیے جانے کے بعد زیونی شاسن کی چنتا بڑھ گئی ہے، اور اس نے اپنے کوٹنیکوں کو نردیش دیے ہیں کہ وہ اس وشے کا اثر کم کرنے کے لیے ابھی بحثیں شروع کر دیں۔ ایکسیس ویب سائٹ نے ایک رپورٹ پرکاشت کی ہے جس میں ویب سائٹ نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیلی دوتاوازوں کو بھیجے گئے پیغام کی کافی حاصل کر لی ہے، جس میں اسرائیلی کوٹنیکوں کو نردیش دیا گیا ہے کہ وہ انتراشٹری عدالت میں دکشنی افریقہ کے ذریعے اٹھائے گئے نسلی صفائی کے مدعے کے خلاف بیان دیں۔ اس معاملے میں انتراشٹری عدالت کی طرف سے اسرائیل کے لیے غزہ یدھ روکنے کا آدیش جاری ہونے کی سمبھاونا ہے، اور اسرائیل کو ڈر ہے کہ اگر عدالت سے اس طرح کا فیصلہ آیا تو اس کے آرتھک کوٹنیتک اور راجنیتک دشپرینام اسرائیل کو جھیلنے ہوں گے۔ दक्षिणी अफ्रीका की ओर से अदालत में दी गई याचिका में कहा गया है कि इसराइल जो कुछ गजा में कर रहा है वो 1948 के नस्ली सफाई के समझौते का हनन है। ज़ायोनी शासन ने इस मसले पर तत्काल अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन वो इस मामले में अदालत में अपना पक्ष रखेगा और उसकी ओर से इस मामले की पैरवी ब्रितानी वकील मलकम शाह करेंगे। दक्षिणी अफ्रीका ने अदालत से कहा है कि वो तत्काल आदेश जारी करके इसराइल को गजा पर हमले बंद करने के लिए कहे। इसराइल ने कूटनीतिकों को जो निर्देश जारी किए हैं उनका मकसद ये है कि अदालत को इस बात पर तैयार किया जाए कि कोई न्यायिक फैसला न सुनाया जाए और इस बात का ऐलान न करे कि ज़ायोनी शासन गजा पट्टी में नस्ली सफाया कर रहा है। इसराइली कूटनीतिकों से कहा गया है कि वो जिस देश में तैनात है वहां ये बहस करे कि इसराइली अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सैनिक ऑपरेशन कर रहा है। कूटनीतिकों से कहा गया है कि वे गजा में मानवीय सहायता भेजे जाने का मुद्दा उठाएं और कहें कि इसराइल गजा में नस्ली सफाया नहीं कर रहा है। कूटनीतिकों से कहा गया है कि वे इस तरह के बयान दें कि गजा में मानवीय सहायता की सप्लाई बढ़ाई जा रही है, आम नागरिकों को पहुंचने वाला नुकसान कम किया जा रहा है और इसराइल सब कुछ आत्मरक्षा के तौर पर कर रहा है। ज़ायोनी प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू भी दुनिया के कई देशों के नेताओं को इसी प्रकार के संदेश भेजने वाले हैं।
शनिवार को तेल अविव में एक बार फिर सैकड़ों लोगों ने ज़ायोनी प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प के बाद ये प्रदर्शन हिंसक हो गए जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबरें हैं। गजा में बंधक बनाकर रखे गए इसराइली बंधकों के परिजन भी इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे जो नेतन्याहू के इस्तीफे और समय से पहले चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। दो दिन पहले भी इसराइली कैदियों के परिजनों और रिश्तेदारों ने तेल अविव में सड़क जाम करके युद्ध को समाप्त करने और बंधकों को आज़ाद कराने की मांग की थी। इस बीच हमास का कहना है कि बैरूत स्थित उसके कार्यालय के प्रमुख सालेह अल आरूरी की शहादत के बाद गजा में इसराइली कैदियों की आज़ादी के लिए जारी वार्ताओं को रोक दिया गया है।
यमन के उच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख मेहदी अल मशात ने अमरीका को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे यमनी नौसैनिकों को निशाना बनाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। शनिवार को अल मशात ने कहा कि अगर अमरीका ने यमनी नौसैनिकों के हत्यारों को सौंपा तो निश्चित रूप से उसे इस अपराध का खामियाजा भुगतना होगा। इसी तरह से उन्होंने चेतावनी दी कि इसराइली जहाजों को रेड सी से होकर नहीं गुजरने दिया जाएगा। यमन के उच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख का कहना था कि यमन के सशस्त्र सुरक्षा बल रेड सी के संरक्षक हैं और उन्हें यमन की जनता का भरपूर समर्थन हासिल है। अल मशात ने कहा कि अमेरिका विश्व शांति का ठेकेदार बनता था लेकिन आज वो खुद ही विश्व शांति को खतरे में डाल रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका के नेतृत्व में 12 देशों ने रेड सी में एक सैन्य गठबंधन का गठन किया है जिसने बुधवार को एक बयान जारी करके कहा था कि यमन को रेड सी में अपने हमले बंद कर देने चाहिए और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाएगी।
बांग्लादेश में आम चुनावों के लिए पोलिंग हुई जहां देश भर में 1500 से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे जबकि देश की बड़ी विपक्षी पार्टियों ने बायकॉट किया। मतदान शुरू होते ही प्रधानमंत्री हसीना वाजिद ने अपना वोट डाला। वो पांचवीं बार देश का प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए मैदान में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो गई। अपना वोट डालने के बाद शेख हसीना वाजिद ने कहा कि बांग्लादेश एक स्वाधीन देश है और जनता मेरी ताकत है। चुनाव से एक दिन पहले तक देश भर में प्रदर्शन और हंगामे हुए और कई पोलिंग बूथों को आग लगा दी गई। बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना की चुनाव में दोबारा जीत को निश्चित माना जा रहा है जिसके बाद 75 वर्षीय नेता पांचवीं बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का कहना है कि ये एक तरफा चुनाव है जिसे स्वतंत्र और पारदर्शी नहीं माना जा सकता।
भारत का सौर अंतरिक्ष मिशन 4 महीने बाद सूर्य की कक्षा में प्रवेश कर गया। ये अंतरिक्ष मिशन 2 साल तक इसी कक्षा में रहेगा और सूर्य का अध्ययन करके अहम डेटा इकट्ठा करेगा। 4 महीने पहले 2 सितंबर को भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सूरज के सर्वे के लिए सैटेलाइट भेजा था। भारत सूर्य का अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का 4वां देश है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इस प्रकार की जांच के लिए अपने मिशन भेज चुके हैं। इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। ये मिशन तब लॉन्च किया गया है जब भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया था। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस्लाम को बदनाम करने में सोशल मीडिया की भूमिका, यौन तस्कर जेफरी एप्सटीन की कहानी और कश्मीर के बारे में महबूबा मुफ्ती का बयान, इन विषयों पर हम आपको कार्यक्रम में समीक्षाएं और रिपोर्ट सुनवाएंगे। زایونی شاسن کی گپتچر سیوا موساد کے لیے کام کرنے والے یون تسکر جیفری ایپسٹین کے سمپرک میں امریکہ کے پورو راشٹرپتی اور وشو کے کئی جانے مانے لوگ رہے ہیں۔ وستار سے بتا رہے ہیں سید میسم۔
یون تسکری کے دوشی پونجی پتی اور ارب پتی جیفری ایپسٹین سے سمبندھت دستاویزوں کو امریکی عدالت کے آدیش کے بعد سارجنی کر دیا گیا ہے، جس سے مشہور ہستیوں اور موساد کے ساتھ ان کے سمبندھوں کے بارے میں विवरण का पता चलता है। एपिस्टीन राजनीति और व्यापार की दुनिया की प्रमुख हस्तियों से जुड़े थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और ब्रिटिश प्रिंस के छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू के नाम अदालत के दस्तावेजों में प्रकाशित किए गए हैं, जो जेफरी एपिस्टीन मामले से जुड़े लोगों के विवरण का खुलासा करते हैं। ये सेक्स तस्कर केविन स्पेसी और क्रिस टकर समेत कुछ अमेरिकी मशहूर हस्तियों के संपर्क में भी रहा है और उसने एलन मस्क को भी सलाह दी है। एपिस्टीन ने हाई प्रोफाइल लोगों का एक सामाजिक दायरा बनाया और बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण किया। एपिस्टीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर इन महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण किया। जेफरी एपिस्टीन ज्यादातर प्रिंस एंड्रयू जैसी मशहूर हस्तियों के साथ घूमने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने यौन तस्करी के आरोप में मुकदमे के दौरान 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने उनकी मौत को फांसी लगाकर आत्महत्या करार दिया। हालांकि उनकी मौत के असली कारणों के बारे में जनता में काफी संदेह है। एपिस्टीन की मौत के बाद उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों को आगे बढ़ाना असंभव हो गया और एक जज ने 29 अगस्त 2019 को उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। एपिस्टीन पर सेक्स के लिए कम उम्र की लड़कियों का व्यापक नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया था। इस धनी अमेरिकी को एक दशक पहले एक बच्चे को सेक्स स्कैंडल में धकेलने की कोशिश के लिए दोषी ठहराया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन द्वारा जेफरी एपिस्टीन से संबंधित 943 पन्नों के मामले में अदालती दस्तावेजों के सार्वजनिक होने से वर्तमान ब्रिटिश किंग के भाई प्रिंस एंड्रयू को भी इस यौन घोटाले में लिप्त पाया गया है। उन्होंने दिलचस्प विषयों का खुलासा किया है और एपिस्टीन के यौन तस्करी नेटवर्क और उनके सहायक गिलियन मैक्सवेल के बारे में अधिक जानकारी दी है। गिलियन मैक्सवेल के साथ एपिस्टीन के दशकों पुराने रिश्ते के कारण उसे 2021 में अमेरिकी संघीय अदालत में यौन तस्करी और लड़कियों के यौन शोषण के उद्देश्य से शोषण करने में एपिस्टीन की सहायता करने की साजिश का दोषी ठहराया गया। मैक्सवेल एपिस्टीन के साथ साझेदारी में किए गए अपराधों की सजा के रूप में 20 साल जेल की सजा काट रहे हैं। एक और मुद्दा जो अदालती दस्तावेजों के जारी होने से स्पष्ट हो गया है, वह है जेफरी एपिस्टीन का ज़ायोनी जासूसी एजेंसी मोसाद के साथ संबंध। ये मुद्दा दर्शाता है कि मोसाद ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी नैतिक या यहां तक कि राजनीतिक सीमाओं का सम्मान नहीं किया है।
दुनिया में जैसे जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया का विकास होता जा रहा है, वैसे ही वैसे मुसलमानों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर षड्यंत्र भी तेज किए जा रहे हैं। एक समीक्षा लेकर उपस्थित हैं रविश जैदी।
वैसे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि हर धर्म में किसी न किसी एक वर्ग का कट्टरवाद और चरमपंथ की ओर झुकाव हो जाता है। ये केवल इस्लाम धर्म की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के ज्यादातर धर्मों में कुछ इस तरह की स्थिति पाई जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आतंकवाद का जन्म कैसे हुआ और इसको इस्लाम धर्म से ही जोड़कर क्यों दुनिया के सामने पेश किया जाने लगा। तो इसके बहुत सारे जवाब हैं जिन सब का यहाँ उल्लेख नहीं किया जा सकता, लेकिन एक दो पहलुओं को हम बयान करने का प्रयास जरूर करेंगे। दुनिया में जैसे जैसे मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का विकास तेज होता गया, वैसे वैसे मुसलमानों के खिलाफ साजिशें भी तेज होती गईं। इन दोनों की रफ्तार को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दोनों को किसी एक ही मशीन के जरिए चलाया जा रहा है, क्योंकि इस्लाम धर्म दुनिया में फैलने वाला सबसे तेज धर्म माना जाता है। इस्लाम से पहले बहुत सारे धर्म थे, लेकिन उन सारे धर्मों के बाद दुनिया में आने वाला ये धर्म आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। वहीं ऐसा माना जाता है कि मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरनेट के वजूद में लाने वालों ने जब ये देखा कि बिना किसी प्रचार प्रसार और बिना किसी मीडिया प्लेटफॉर्म के जब इस्लाम धर्म इतनी तेजी से फैल सकता है, तो फिर जब आधुनिक दुनिया के ये प्लेटफॉर्म इसे मिल जाएंगे तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान बचे जो इस्लाम धर्म को स्वीकार न करे। इन तमाम बातों को दिमाग में रखते हुए मुसलमानों के खिलाफ ऐसी साजिशें रचने की योजनाएं बनाई गईं कि जिससे मीडिया और सोशल मीडिया जहां पूरी दुनिया में छा जाए, वहीं साथ में आम लोगों तक ये भी सोच पहुंचे कि इस्लाम और मुसलमानों का संबंध आतंकवाद और कट्टरवाद से है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में जिस व्यापकता से सोशल मीडिया का चलन हो चुका है, उसी तरह इस्लाम को बदनाम करने वाली सामग्रियों की भरमार भी इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। पिछले एक दशक से ज्यादा समय से एक नाम पूरी दुनिया में छाया हुआ है और वो है तकफीरी आतंकवादी गुट दाइश का नाम। पश्चिमी एशिया क्षेत्र की स्थितियों, विशेष रूप से गजा में युद्ध और प्रतिरोध से ज़ायोनी शासन की हार और भारी क्षति को ध्यान में रखते हुए शुरू से ही अवैध ज़ायोनी शासन के मुख्य समर्थक के रूप में अमरीका को देखा जाता रहा है। अवैध ज़ायोनी शासन के वजूद में आने से लेकर आज तक अमरीका किसी भी स्तर पर जाकर इस अवैध शासन को पश्चिमी एशिया में बनाए और बचाए रखना चाहता है। उसके लिए उसने सीरिया, इराक और लेबनान को सबसे पहले निशाना बनाया और साथ ही साथ ईरान तो उसके सबसे बड़े टारगेट में से है ही। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि जिससे पता चलता है कि अमेरिका ने प्रतिरोध की धुरी का सामना करने के लिए तकफीरी आतंकवादी समूह दाइश की स्थापना और उसके फलने फूलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इराक और सीरिया और फिर अफगानिस्तान में दाइश की गतिविधियों का विस्तार करने के लिए वाशिंगटन ने निरंतर प्रयास किए हैं। कथित तौर पर पश्चिम के नेता के रूप में अमेरिका ने अपने पश्चिमी और अरब साझेदारों के साथ मिलकर दाइश सहित तकफीरी आतंकवादियों का समर्थन किया और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल करता आ रहा है। अगस्त 2016 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहने के दौरान अपने एक चुनावी भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें और चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और पूर्व अमरीकी विदेश मंत्री को दाइश का संस्थापक बताया था। इसके अलावा अमरीकी राजनेता रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जिन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी भागीदारी की घोषणा की है और डेमोक्रेटिक पार्टी में जो बाइडेन के प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं, उन्होंने भी दाइश के गठन में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका को स्वीकार किया है। कुल मिलाकर यह कुछ ऐसा नजरिया है कि जो इस बात की ओर इशारा करता है कि आज पूरी दुनिया में, विशेषकर पश्चिमी एशिया में, तकफीरी आतंकवाद का जो आतंक है, वास्तव में वो आतंकी अमरीका ही है। दुनिया भर में जो भी देश आतंकवाद से जख्मी है, वो जख्म अमरीका का ही दिया हुआ है। हाल ही में ईरान में शहीद कासिम सुलेमानी की शहादत की बरसी के मौके पर होने वाला आतंकवादी हमला और उसमें शहीद होने वाले सैकड़ों बेगुनाह लोगों का वास्तव में कोई मुजरिम है तो वो अमरीका ही है। जरा सोचें, ये कौन लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद का गंदा खेल खेल रहे हैं और उससे केवल मुसलमानों को ही नुकसान पहुंच रहा है। आखिर गजा की मजलूम जनता की मदद के लिए इस्लाम के नाम पर कथित तौर पर धमाके करने वाले कहां गायब हो जाते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। कश्मीर की नेता महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि पाकिस्तान से वार्ता के बिना दक्षिणी एशिया में शांति संभव नहीं है। श्रीनगर से पेश है सिप्ते मोहम्मद हसन की रिपोर्ट।
विपक्षी दल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नई दिल्ली से मुताबला किया है कि वो जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए वार्ता का दार इख्तियार करें। पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी के हवाले से दक्षिणी कश्मीर के बेजबहड़ा में एक भारी जनसभा को संबोधित करते हुए पीडीपी की महिला अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नई दिल्ली ने जम्मू कश्मीर के हवाले से जो नीति अख्तियार कर रखी है वो उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो हमें उनके अनुसार लाठी से खामोश करना चाहते हैं, परंतु हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम इज्जत दो और इज्जत लो की पॉलिसी के हामी हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान के साथ वार्ता के बगैर दक्षिणी एशिया में शांति मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि तमाम समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ वार्ता से ही निकाला जा सकता है। इस बीच आज जनसभा के बीच एक गैर मुतवक्के तौर पर मुजफ्फर हुसैन बेग, जिसको पीडीपी से निकाला गया था, को मंच पर देखा गया। और ये भी बताया जाता है कि आने वाले दिनों में कई अन्य लोग भी पीडीपी में शामिल होने के लिए पर तोल रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर नई दिल्ली से कहा है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से वो अपनी पॉलिसी वाजह करें। श्रीनगर में एक जनसभा के बाद पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए उनके दिग्गज नेताओं ने कहा,
देखिए जिस तरह का माहौल, कल से मैं जम्मू आया हूँ, हमारे सब लीडरान के साथ हम मिलके जम्मू में थे, आज हम अनंतनाग आए हैं और भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान मैं हाथ से हाथ जोड़ो में यहाँ इंचार्ज था। पिछले समय में जो हालात थे उससे कांग्रेस आज एकदम मजबूत होकर काम कर रही है, कार्यकर्ता में जोश है और आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार की एंटी पीपल पॉलिसी गवर्नर रूल के साथ केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, लोग नाराज हैं महंगाई से, बेरोजगारी से।
सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है और श्रोताओ, प्रस्तुत है कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार। कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और इस कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। आइए पहले सूरह नूर की आयत क्रमांक 43 और 44 की तिलावत सुने।
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایشور ہی پہلے ہواؤں کے سہارے بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر انہیں ایک دوسرے پر تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے ورشا ہوتی ہے اور وہ آکاش سے پہاڑ جیسے بادلوں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے ان اولوں کو گراتا ہے اور جس پر سے چاہتا ہے اس کے نقصان کو ہٹا دیتا ہے۔ ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی کو اچک لے جائے گی۔ ایشور ہی رات اور دن کو ایک دوسرے پر پلٹتا رہتا ہے، نشچے ہی اس میں بدھیوانوں کے لیے ایک پاٹھ ہے۔
یہ آیتیں سرشتی کے سنچالن میں ایشور کی بھومیکا کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ رات دن کی آواجاہی جو دھرتی، چندرما و سوریہ کی ویوستھت چال کا پریڑام ہے، ایشور کا کام ہے، اور یہ سنیوگ وش نہیں ہے۔ کیا بدھی اس بات کو سویکار کرتی ہے کہ کسی سنیوگ سے اتنی سویوستھت، سٹیک و معاشری جنک ویوستھا نکل کر آئے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اکشروں کو ایک دوسرے سے گڈمٹ کرنے کے بعد انہیں اتنا ہلایا کہ ان سے سندر کویتاؤں کی ایک کتاب تیار ہو گئی۔ کیا کوئی اس بات کو سویکار کرنے کے لیے تیار ہوگا؟
نہ کیول دھرتی کی پریکرما اور دن و رات کی آواجاہی، بلکہ آکاش میں بادلوں کا ادھر سے ادھر ہونا بھی ایشوریہ یکتی کے آدھار پر ہے۔ ہواؤں کا چلنا اور بڑے بڑے بادلوں کا بننا کہ جو ورشا اور کبھی کبھی اولے گرنے کا کارن بنتے ہیں، یدیپی ایک پراکرتک کریا ہے، کنتو یہ ایشور کی اچھا پر نربھر ہے۔ یہی کارن ہے کہ کبھی کسی کھیتر میں ورشا ہوتی ہے تو دوسرے کھیتر میں نہیں ہوتی۔
رات دن کی آواجاہی کے وپریت کہ جو سدا ایک استھائی ایوم سمیکرن یوگیہ بات ہے، دھرتی کے وبھن کھیتروں میں بادلوں کا چلنا اور بارش یا اولوں کا گرنا ایک سمان نہیں ہوتا۔ اتہ سمبھو ہے کہ کسی کھیتر میں ایک یا کئی ورش تک بہت ادھک ورشا ہو اور اگلے ورشوں میں اسی کھیتر میں سوکھا و اکال پڑ جائے۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ سرشتی کی ویوستھا میں پراکرتک کارک ایشور کی اچھا اور اس کی شکتی کے انترگت ہیں، اور ایشور اپنی تتو درشتا کے آدھار پر انہیں پریوگ کرتا ہے۔
ورشا، اولے اور برف باری لابھدائک بھی ہو سکتی ہے اور ہانیکارک بھی، اور یہ دونوں باتیں ایشور کی اچھا پر نربھر ہیں۔
آئیے اب سورہ نور کی آیت کرمانک 45 کی تلاوت سنیں۔
واللہ خلق کل دابت من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔
اور ایشور نے ہر جیو کو پانی سے پیدا کیا تو ان میں سے کوئی اپنے
پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی دو ٹانگوں پر چلتا ہے اور کوئی چار ٹانگوں پر چلتا ہے۔ ایشور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کیونکہ نشچے ہی ایشور کو ہر چیز پر سامرتھ پراپت ہے۔
پچھلی آیتوں میں ورشا اور دن رات کی آواجاہی کی شیلی کے بارے میں سنکیت کرنے کے بعد ایشور ان آیتوں میں وبھن پرکار کے جیووں کے جیون کے بارے میں کہتا ہے کہ زمین، آکاش یا سمندر میں پائے جانے والے سبھی پشو پکشی ایشوری یکتی کے آدھار پر پانی سے بنائے گئے ہیں اور انہیں اپنے جیون کو جاری رکھنے کے لیے بھی پانی کی آوشکتا ہوتی ہے۔
دھرتی میں جیووں کی وویدھتا اور انیک پرکار کے پرانیوں کا استتو، جن میں سے کچھ کی اور اس آیت میں سنکیت کیا گیا ہے، ایشور کی اسیم شکتی کا چن ہے، جس نے اسی پانی و مٹی سے اتنے پرکار کے جیو جنتو اور پشو پکشی بنائے۔
اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ ایشور دوارا جیووں کی سرشٹی سماپت نہیں ہوئی ہے اور اب بھی جاری ہے۔
ہر جیو کا مول تتو پانی ہے۔ یہ ایشور کی شکتی کی نشانی ہے کہ اس نے اتنی سرل سی چیز سے اتنے وویدھ جیووں کی رچنا کی ہے۔
یدی منشیا میں آدھیاتمک گتیشیلتا نہ ہو تو پھر وہ بھوتک گتیشیلتا میں انیہ جیووں کی قطار میں آ جائے گا اور ایک پشو سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔
آئیے اب سورہ نور کی آیت کرمانگ 46 اور 47 کی تلاوت سنیں۔
لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔
نشچے ہی ہم نے ستیہ پرکٹ کر دینے والی آیتیں اتار دی ہیں اور ایشور جسے چاہتا ہے اس کا سیدھے راستے کی اور مارگ درشن کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایشور اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے اور ان کا آگیا پالن کر رہے ہیں۔ پھر اس سویکاروکتی کے بعد ان میں سے ایک گٹ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ کداپی واستوک ایمان والے نہیں ہیں۔
سرشٹی کی ویوستھا میں ایشوریہ نشانیوں کے ورنن کے پشچات یہ آیتیں لوگوں کے مارگ درشن کے لیے ایشور کی اور سے اپنا وشیش سندیش وہی بھیجے جانے کی اور سنکیت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آسمانی کتاب کی تتھ اجاگر کرنے والی آیتیں لوگوں کو جیون کے صحیح مارگ کی اور آمنترت کرتی ہیں کہ جو ہر پرکار کے ٹیڑھے پن اور کمی و بیشی سے دوری پر آدھارت ہے۔ یہی وہ مارگ ہے جو ایشور نے گنتویہ تک پہنچنے کے لیے منشیہ کے سمکش رکھا ہے اور اپنے پیغمبروں کو اسی سیدھے راستے کی اور اس کا مارگ درشن کرنے کا دائتو سونپا ہے۔
البتہ سدیو لوگوں کے کچھ گٹ جھوٹ بول کر سوئم کو پیغمبروں تک ان کے بتائے ہوئے مارگ کا انویائی کہتے ہیں اور زبان سے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں جسے نہ تو وہ دل سے سویکار کرتے ہیں اور جو نہ ان کے کرم میں دکھائی دیتی ہے۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ ایشور نے پیغمبروں کو بھیج کر تتھا تتھیوں کو اسپشٹ کرنے والی آیتیں اتار کر لوگوں کے مارگ درشن کے سادھن اپلبدھ کرا دیے ہیں اور اب ان کے پاس ایمان نہ لانے کا کوئی بہانہ نہیں رہ گیا ہے۔
اسلامی سماجوں کے سمکش متھیا ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور وہ انہیں کشتی پہنچاتی ہے۔
کسی بھی بات پر بہت جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور سندر ناروں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، اب پرستت ہے سبھا کا انتم کارکرم آج کل۔
آج کل
دوستو، کارکرم آج کل میں آپ کا سواگت ہے۔ مریم اردادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، غیر قانونی و اویدھ زانی سرکار کو بنیاد رکھے ہوئے 75 سال سے ادھک کا سمے گزر رہا ہے۔ اس اودھ میں اویدھ زانی سرکار نے کئی لاکھ فلسطینیوں کو شہید، گھائل اور بے گھر کر دیا اور اس کے اتیاچاروں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ गत 7 अक्टूबर से अलक्सा तूफान नामक ऑपरेशन आरंभ हुआ है। तब से लेकर आज तक इसराइल के पार्श्विक अपराध यथावत जारी हैं और उसके पार्श्विक हमलों में घायल और शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 80,000 से अधिक हो गई है। इसी प्रकार इसराइल के पार्श्विक हमलों में कई लाख फिलिस्तीनी बेघर हो गए और कोई भी स्थान उनके लिए सुरक्षित नहीं है।
गत 7 अक्टूबर से इसराइल के पार्श्विक हमले जारी हैं, जिसकी वजह से गजा फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों विशेषकर बच्चों की कब्रिस्तान बन गया है। लगभग कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इसराइल के पार्श्विक हमलों में 100 से अधिक फिलिस्तीनी शहीद न हों। शहीद होने वालों में सबसे अधिक संख्या फिलिस्तीन के मासूम बच्चों और निर्दोष महिलाओं की है। हजारों निर्दोष और मजलूम फिलिस्तीनियों की लाशें अब भी मलबे के नीचे दबी हुई हैं। अलक्सा तूफान के आरंभ से अमेरिका ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो इसराइल के साथ है और उसे जिस हथियार की जरूरत होगी हम उसे देंगे। दूसरे शब्दों में अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला घोषणा कर दी है कि फिलिस्तीनियों के नरसंहार में हम इसराइल के साथ हैं।
इस संबंध में एक रोचक बिंदु ये है कि जब से अवैध ज़ायनी सरकार की बुनियाद रखी गई है तब से लेकर आज तक उसे इतनी बड़ी जानी व माली क्षति नहीं हुई थी और उसने कभी सपने भी में नहीं सोचा था कि हमास के हाथों उसे इतनी बड़ी टक्कर का सामना होगा। अवैध ज़ायनी सरकार आवासीय मकानों, अस्पतालों, मस्जिदों, गिरजाघरों और स्कूलों आदि पर पार्श्विक हमला करती है और इन हमलों का औचित्य दर्शाने के लिए कह देती है कि इन स्थानों पर हमास के लड़ाके छिपे हैं, जबकि उसके पार्श्विक हमलों में आम लोगों, महिलाओं और बच्चों के अलावा कोई और नहीं शहीद होता। यही नहीं, ज़ायनी सरकार के हमलों में उसके कई बंधक भी मारे गए हैं। ज़ायनी सरकार ने क्रिसमस की रात को भी भीषण बमबारी की जिसमें 200 से अधिक फिलिस्तीनी शहीद हो गए।
बच्चों के अधिकारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र को जारी हुए कई दशक का समय गुजर रहा है और इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा पर कटिबद्धता जताई है, पर अमेरिका ने अब तक इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जबकि वो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरता और राग अलापता फिरता है। यही नहीं, अमेरिका ने प्रतिबंधित फॉस्फरस बम भी इसराइल को दिए और वो बम फिलिस्तीन के मजलूम लोगों पर गिराए गए। अमेरिका और यूरोपीय व पश्चिमी देशों का व्यापक समर्थन है जिसके कारण इसराइल फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के खिलाफ अपने पार्श्विक हमलों को जारी रखे हुए है और वो इस बात से पूरी तरह निश्चिंत है कि उसका कुछ नहीं होगा और अवैध हितों के मार्ग में वो स्वयं को हर प्रकार के कानून से परे समझता है।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इस बात से आश्वस्त है कि राष्ट्रसंघ और सुरक्षा परिषद में उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके आकाओं विशेषकर अमेरिका का वहां शासन व नियंत्रण है और वो सुरक्षा परिषद में इसराइल विरोधी प्रस्ताव को वीटो कर सकता है। जैसा कि गजा पट्टी पर इसराइल के पार्श्विक हमलों को रोकवाने के संबंध में पेश किए गए दो प्रस्तावों को अमेरिका ने वीटो करके उसे पारित होने से रोक दिया था।
अमेरिका स्वयं को मानवाधिकारों की रक्षा का दावेदार और दूसरों को प्रजातंत्र व डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता फिरता है, परंतु 7 अक्टूबर के बाद से उसने इसराइल का जिस तरह से समर्थन किया और कर रहा है उससे उसके चेहरे पर मानवाधिकार की पड़ी नकाब हट गई है और पूरी दुनिया के लोग उसके वास्तविक चेहरे से अवगत हो गए हैं। अब तक दुनिया के बहुत से लोग उसे मानवाधिकारों का रक्षक समझते थे, परंतु फिलिस्तीन की मजलूम जनता के खिलाफ उसके कृत्यों से उसकी वास्तविकता जगजाहिर हो गई। यही नहीं, दूसरे पश्चिमी व यूरोपीय देशों का भी असली चेहरा सामने आया।
ये देश भी दूसरे देशों व राष्ट्रों को मानवाधिकार और डेमोक्रेसी का दर्श देते फिरते हैं, परंतु एक बार भी उन्होंने फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के खिलाफ इसराइल के नृशंस व पार्श्विक हमलों की न केवल निंदा तक नहीं की बल्कि बड़ी निर्लज्जता से इसराइल के समर्थन की घोषणा की और कहा कि इसराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। जो देश ये कहते हैं कि इसराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर अधिग्रहणकारी को आत्मरक्षा का अधिकार है तो जिसकी जमीनों पर अवैध ढंग से कब्जा किया गया है उसे आत्मरक्षा का अधिकार क्यों नहीं है? کتنی عجیب بات ہے کہ اسرائیل نے اوائد ڈھنگ سے اور طاقت کے بل پر فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور آئے دن ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے کالونیوں کا نرمان کرتا پھرتا ہے اور مانوادھیکاروں کی رکشا کا دم بھرنے والے ارتھپورن چپی سادے ہوئے ہیں اور یہ دیش کہتے ہیں کہ اسرائیل کو آتم رکشا کا ادھیکار پراپت ہے اور یہ دیش اپنی ماتر بھومی کی آزادی کے لیے لڑنے والے فلسطینیوں کو آتنکوادی کہتے ہیں۔
بہت سے جانکار حلقوں کا ماننا ہے کہ امریکہ پشچیمی و یورپی دیشوں کے کریا کلاپوں کو دیکھ کر ان کی واستوکتا کو بہت اچھی طرح دیکھا و پہچانا جا سکتا ہے۔ ان حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر ہولوکاسٹ کی گھٹنا ہوئی تو جرمنی میں ہوئی ہے، نہ کہ فلسطین میں، اور اگر یہودیوں کو گیس کی بھٹیوں میں زندہ جلا کر مارا گیا ہے تو ہٹلر نے مارا ہے، نہ کہ فلسطینیوں نے۔ اس میں فلسطینیوں کا کیا دوش ہے؟ اگر یہودی مظلوم تھے تو انہیں یورپ کے کسی دیش میں بسنا چاہیے تھا، نہ کہ فلسطین میں۔
یہاں ایک انیہ بندو کا الیکھ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ آج فلسطین میں اسرائیل جو اپرادھ کر رہا ہے اس کے سمبندھ میں بہت سے یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے کرتیوں کا یہودیوں سے کوئی سمبندھ نہیں ہے، اور زائنی نہ تو یہودی ہیں اور نہ ہی یہودیوں کے رکشک، اور فلسطین کی زمینوں پر قبضہ کر کے اسرائیل کی استھاپنا تورات کی شکشاؤں کے خلاف ہے، اور خود بہت سے یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ زائنی یہودیوں کے دشمن ہیں، نہ کہ فلسطینی اور حماس۔ اس پرکار کا وچار رکھنے والے یہودیوں کا ماننا ہے کہ فلسطین میں اسرائیل کے اوید استھ کی گھوشنا سے پہلے ہم فلسطینیوں کے ساتھ شانتی پورن ڈھنگ سے رہتے تھے، اور ساری سمسیا اسرائیل کے اوید استھ کی گھوشنا کے بعد آرمبھ ہوئی۔
بہت سے جانکار حلقوں کا ماننا ہے کہ آج اسرائیل بڑی ہی نرممتا و بربرتا سے مہیلاؤں اور بچوں کی جو ہتیا کر رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماتر بھومی کی آزادی کے لیے سنگھرش کرنے والے حماس اور دوسرے فلسطینی گٹوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے، تو اپنا غصہ نکالنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اور اگر واسطو میں وہ بہادر ہوتا تو کبھی بھی مہیلاؤں اور بچوں کی اتنی بربرتا سے ہتیا نہ کرتا۔ زائنی بچوں اور مہیلاؤں کی ہتیا پر نہ کیول کبھی افسوس تک نہیں کرتے، بلکہ ان کی ہتیا پر گرو کرتے اور کہتے ہیں کہ ہر فلسطینی بچہ ٹائم بوم ہے، اور دنیا کو ہمارا آبھار ویکت کرنا چاہیے کہ ہم نے اتنی سنکھیا میں بچوں کو مارا ہے۔ امریکہ اور اس کے ہاں میں ہاں ملانے والے مانو ادھیکار کی رکشا کا دم بھرتے ہیں، پرنتو ہزاروں نردوش فلسطینی اسرائیل کے آتنکی حملے میں مارے جا چکے ہیں، مگر ایک بار بھی ان دیشوں میں سے کسی ایک دیش نے بھی ان اپرادھوں کی نہ کیول بھرسنا تک نہیں کی بلکہ کھیت تک نہیں جتایا، اور پوری نرلجتا کے ساتھ اتیگرن کاری اسرائیل کا سمرتھن کرتے ہیں، اور حماس نے جن اسرائیلیوں کو بندک بنا رکھا ہے ان کی سرکشا پر چنتا جتاتے ہیں، مگر مارے جانے والے فلسطینیوں پر کھیت تک ویکت نہیں کرتے ہیں۔ اس پرکار کے کھلے دوہرے ماپدنڈ کے ساتھ یہ دیش مانوادھیکار کی رکشا کا دم بھرتے ہیں۔
زائنی سینک فلسطین کے نردوش لوگوں کی ہتیا جس بربرتا و کرورتا سے کر رہے ہیں، اس سے ان کا ایک مقصد فلسطینی لوگوں کو ان کی ماتر بھومی چھوڑنے پر بادھ کرنا ہے، پرنتو فلسطین کے لوگ اسرائیل کے اس شیطانی لکش کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ فلسطین میں مرنا پسند کرتے ہیں، پرنتو کسی بھی حالت میں اپنی ماتر بھومی چھوڑ کر جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔
یہی نہیں، فلسطین سے پراپت سماچاروں کے انوسار زائنی سینک فلسطینی شووں کے انگوں کی بھی چوری کر رہے ہیں، اور یہ کرتیہ زائنی سینکوں کا پرچلت و سامان اپرادھ بن گیا ہے۔ فتح آندولن کے پروکتا جمال नज्जार ने इसराइल द्वारा गजा में शहीद होने वाले लोगों के शवों की चोरी के संबंध में जांच कराए जाने की मांग की है और कहा है कि गजा में शहीद होने वाले और मलबे में दबे लोगों में से 10,000 लोगों को अब तक नहीं निकाला गया और प्रबल संभावना यह है कि जानी सैनिकों ने उनके शवों को चुरा लिया है। मिस्री समाचार पत्र ने शुक्रवार 29 दिसंबर के अपने संस्करण में एक जांच रिपोर्ट प्रकाशित करने के साथ लिखा था कि जायनी सरकार शहीद फिलिस्तीनियों के शवों और उनके अंगों को काफी समय तक अपने पास रखती है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक मुनीर अलबुरश ने 18 नवंबर को अल जजीरा टीवी से बातचीत में कहा कि इसराइली सैनिकों ने गजा के अशफा अस्पताल से 130 शवों को और एक सामूहिक कब्र से 15 शवों को बाहर निकाल लिया। ये शव कुछ समय तक गायब रहे, फिर उनमें से कुछ को लौटा दिया गया।
समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि गाजा में जो तबाही हुई है उसकी तुलना किसी तबाह व बर्बाद हुए शहर से नहीं की जा सकती और इसराइल मध्य दिसंबर तक 29,000 से अधिक बम और दूसरे हथियार गाजा पर मार चुका था और गजा के लगभग 70% मकान तबाह हो चुके हैं। पानी और बिजली आदि की सेवाएं इस तरह से तबाह हो गई हैं कि उनका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। बैतलहम के एक पादरी मुंथर इसहाक ने क्रिसमस समारोह में पश्चिम के पाखंडी रवैये की आलोचना करते हुए कहा, मैं पश्चिम के जातिवादी व पाखंडी व्यवहार से भयभीत व दुखी हूँ और क्रिसमस के अवसर पर हम खुशी मनाने के बजाय शोक मना रहे हैं और केवल गजा में 20,000 से अधिक फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और उनमें से हजारों लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हैं और शहीद होने वालों में केवल 9,000 बच्चे हैं। गजा में जो कुछ हो रहा है, अगर उससे आप दुखी नहीं हो रहे हैं, अगर आपका शरीर कांप नहीं रहा है, तो आपकी इंसानियत में खराबी है।
इसी प्रकार बैतलहम के पादरी ने कहा कि फिलिस्तीनियों को बहुत अधिक जानी व माली क्षति हुई है, परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि वे दोबारा बेहतर व सही हो जाएंगे, जैसा कि इससे पहले भी बारंबार हो चुका है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए। Thank you.